किसी मेल को जब फीमेल ब्रेस्ट की तरह चेस्ट डेवलप हो जाती है, हम उसको गायनेकोमास्टिया कहते हैं। बीमारी इसलिए है क्योंकि ये एक आपको ऊपर साइकोलॉजिकल बोझ बन जाती है। आप अपने आप को छुपा रहे हैं अलग अलग क्लोथिंग में और यू नॉट फीलिंग कंफर्टेबल अबाउट इट, सो इट्स अ डिजीज।
पर आजकल लड़कों में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बहुत है, इवन गर्ल्स भी कमेंट करती है।
इवन पीपल वो जस्ट 18 इयर्स ओल्ड, वो भी घर से नहीं निकलना चाहते, स्कूल नहीं जाना चाहते, कॉलेज नहीं जाना चाहते, दे अवॉइड कि हम नहीं कर सकते हैं। वी कांट फेस द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस।
If I were to remove my shirt after a physical education class, sometimes boys would tease and they go, "Oh, look, you know, Ben has boobs."
Steroid use se bhi gynecomastia ka incidence badh raha hai.
If your body is more sensitive to that small amount of female hormone, you get a full.
Breast cancer males mein bhi hota hai.
There is no guarantee ki male mein hoga.
तो ऐसी क्या क्या चीज़ें मैं अपने अंदर देखूँ या एग्जामिन करूँ जिससे मैं अपनी गायनेकोमास्टिया को ग्रेड कर सकूँ या समझ सकूँ मुझे कब डॉक्टर के पास जाना है? तो लड़के के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, तो एज अ पेरेंट क्या करना चाहिए?
एज अ पेरेंट यू शुड टॉक टू द चाइल्ड। आई एम अ फादर, सो आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट कि मेरे बच्चे को सर्जरी करानी पड़े।
तो आर देयर एनी मेडिकेशंस दैट वर्क फॉर गायनेकोमास्टिया? नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी कोशिश रहती है कि मर्दों के सारे रोग, जो सेक्सुअल डिजीज़ है या मेंस हेल्थ से रिलेटेड डिजीज़ है, उसके बारे में आपको हमेशा एक अच्छी जानकारी मिलती रहे। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सोपति, जो बहुत सीनियर प्लास्टिक सर्जन है न्यू दिल्ली इंडिया में, और इनसे हम आज जानेंगे एक कंडीशन जिसको बोलते हैं गायनेकोमास्टिया या मैन बूब्स। तो गायनेकोमास्टिया के बारे में रिसेंटली बहुत ज़्यादा बज़ है। गायनेकोमास्टिया के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आप देखेंगे इंटरनेट पे कि लोगों ने सर्जरी कराई है और फंस गए हैं, अननेसेसरी सर्जरीज हो रही है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से कि ये गायनेकोमास्टिया या मैन बूब्स प्रॉब्लम है भी या सोशल मीडिया की वजह से प्रॉब्लम बनाई जा रही है, इसके लिए क्या क्या सर्जिकल ऑप्शंस है और क्या आपके लिए सर्जरी ज़रूरी है भी या नहीं। सर्जरी करानी है तो कैसे अच्छा सर्जन चूज़ करें, कॉस्टिंग क्या आती है, गायनेकोमास्टिया की कुछ दवाइयाँ भी है क्या, या सर्जरी ही हमेशा करनी पड़ेगी, और अगर सर्जरी करा रहे हैं तो सर्जरी में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, ये एपिसोड ज़रूर देखिए। अगर आपको गायनेकोमास्टिया है और आप सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस एपिसोड से इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी तो मिलेगी। हो सकता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत भी ना पड़े। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज मेड टॉक्स विद डॉक्टर गोविंदा। वेलकम सर।
हेलो।
तो डॉक्टर सोपति, आप प्लास्टिक सर्जन हैं, तो कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है और आप अपना कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए।
जी, मेरा नाम चरणजीत सोपति है एंड आई एम अ प्लास्टिक सर्जन। अब प्लास्टिक सर्जरी, जैसे प्लास्टिक है एक न्यूमरस फॉर्म्स में अवेलेबल है, हर चीज़ प्लास्टिक की बनी जाती है, तो उस तरह ये एक सर्जरी है विच कैन चेंज लॉट्स ऑफ फॉर्म्स, बॉडी को अडेप्ट करना, अलग तरीके से लेकर आना, तो उस चीज़ के लिए उसको नाम प्लास्टिक सर्जरी रखा गया है। नॉट दैट इट यूजेज एनी प्लास्टिक, बट बिकॉज वी कैन ट्रांसफॉर्म थिंग।
तो हम बहुत डेली सुनते हैं न्यूज़ में कि इस फलानी एक्ट्रेस ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, किसी ने नाक करवाई है, किसी ने, तो प्लास्टिक सर्जरी में क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब बॉलीवुड में चेंज हो सकती है?
सो एक तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोई गुनाह नहीं है। If you feel inadequate or uncomfortable with some feature, please go for it. ऐसा कुछ गड़बड़ तो कर नहीं रहे हैं, यू आर जस्ट डूइंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एंड द अदर थिंग इज दैट इफ समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, दैट्स द ओनली थिंग दैट इज न्यूज़ वर्दी, जो लोगों को चाहिए गप्पे मारने के लिए कि भाई ये गलत हो गया, ये हो गया। तो हज़ारों लोगों ने जो कराया वो चुपचाप निकल गया, वो पता नहीं चलता। जो 0.1% में या 1% में भी कुछ प्रॉब्लम आई, दैट बिकम्स न्यूज़।
तो प्लास्टिक सर्जरी में सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर जोर है। तो एक कंडीशन जो आज के दिन बहुत बज में है वो है गायनेकोमास्टिया या मैन बूब्स। तो क्या होता है गायनेकोमास्टिया? व्हाट इज गायनेकोमास्टिया?
किसी मेल को जब फीमेल ब्रेस्ट की तरह चेस्ट डेवलप हो जाती है, हम उसको गायनेकोमास्टिया कहते हैं कि आपका चेस्ट एक फीमेल की तरफ जा रहा है, ऑल्दो रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड योर थॉट्स आर मेल।
अच्छा, तो अगर छाती बढ़ जाए मर्दों में तो उसको गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। तो क्या गायनेकोमास्टिया हमेशा ही गलत होती है या गायनेकोमास्टिया एक नॉर्मल पार्ट भी हो सकता है बॉडी का?
एक स्पेक्ट्रम है बॉडी का, जिसमें नॉर्मल से लेकर ऊपर तक आए, गायनोकोमेस्टिया पर से कोई डिजीज नहीं है. इन वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल गायनोकोमेस्टिया कैन बी ड्यू टू सम अंडरलाइंग डिजीज. कोई बीमारी है आपको जिसके कारण गायनोकोमेस्टिया बना, बट लेट्स से 99% इडियोपैथिक है, ये बीमारी नहीं है. पर बीमारी इसलिए है क्योंकि ये एक आपको ऊपर साइकोलॉजिकल बोझ बन जाती है. आप अपने आप को छुपा रहे हैं अलग अलग क्लोदिंग में और यू नॉट फीलिंग कंफर्टेबल अबाउट इट, सो इट्स अ डिजीज.
तो मतलब गायनेकोमेस्टिया मतलब छाती का बढ़ना बीमारी नहीं है, पर क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लगता इस कारण से बीमारी है.
स्पेशली अब जैसे मीडिया में एवरीवेयर क्लोदिंग हमारी ऐसी हो गई है, अवेयरनेस ऐसी हो गई है कि वो पकड़ में आती है और उसको लोग बुरा मानते हैं.
अगर कोई व्यक्ति है जिसको गायनेकोमेस्टिया है या छाती बढ़ गई है, तो अगर उसको उससे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मोटा है और उसकी छाती है और उसको उससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको जरूरी है कि उसका इलाज कराए? ना,
नहीं नहीं, उसको जरूरी बिल्कुल नहीं है. He should get himself examined कि कुछ अंदर पैथोलॉजी तो नहीं है, पर उसका इलाज इज टोटली योर बेस्ड. यू गेट इट डन ओनली इफ यू आर अनकंफर्टेबल विद इट.
मतलब अगर आपको गलत लग रहा है तो आप कराइए.
हाँ, आपको एम्बेरसमेंट फील हो रही है, आपको कपड़े बुरे, आप एडजस्ट करते रहते हैं, आप अपना पोस्चर एडजस्ट करते रहते हैं, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ पीपल स्लाउचिंग फॉरवर्ड्स, अपने आप को छुपा रहे हैं वो, या एम्बेरस हो रहे हैं आपके, आप टी शर्ट्स नहीं पहन पा रहे. हाँ, तो यू गो फॉर इट.
पर अगर आप उसका इलाज नहीं भी कराते हैं तो भी ये ऐसे कोई डिजीज नहीं है जो आपको बीमार कर सकती है
जी.
पर ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो सीरियस होती है जिससे गायनेकोमेस्टिया हो सकता है? और कई बार क्या है, गायनेकोमेस्टिया साइन होता है कोई और बीमारी का. कैसे कोई बीमारियां हैं जिसमें गायनेकोमेस्टिया एज अ साइन या ऐसे कोई बड़ी बीमारी का साइन हो सकता है?
सो दैट विल डिपेंड अपॉन द पेशेंट्स एज. आपकी क्या उम्र है? जो यंग में होती है उसमें जनरली हमारा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस या क्रोमोसोमल एनामली है जिस कारण से ये बन गई. पर उसमें उसके साथ साथ जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि मूछें, दाढ़ी आना या छाती पे बाल आना, वो सब भी अलग होंगे. आपका जेनिटेलिया ऑर्गन्स भी सब अलग होंगे. और दूसरा एज ग्रुप है जिसमें वो डेवलप होती है, इस ओल्डर एज ग्रुप. तो उसमें आपका रीनल या किडनी फंक्शन, जो आपका हॉर्मोन्स आपके बॉडी ने मेटाबोलाइज करके ख़त्म करने थे, वो नहीं हो रहे या गलत मेटाबोलाइज हो रहे हैं या गलत बन रहे हैं, कोई ऐसा एंडोक्रिन ट्यूमर हो गया. और तीसरा ग्रुप है जो आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण आपने लॉन्ग टर्म दवाई ली, तो कुछ दवाइयों का भी होता है साइड इफेक्ट. एंड देन एक अनदर ग्रुप वी कैन से इज दोज हु आर अब्यूजिंग ड्रग्स, लाइक जो बॉडी बिल्डिंग में हार्मोनल इंजेक्शंस लगवाते रहते हैं, उससे भी ये बन जाती है.
तो उसी बात पे आते हैं. आज के दिन गायनेकोमेस्टिया इसलिए भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि बॉडी बिल्डर्स जो आजकल स्टेरॉइड का एक जनरेशन है जो जिम में आजकल बॉडी बना रहे हैं स्टेरॉइड से, तो कहते हैं कि अगर आपने स्टेरॉइड लिया है तो मैन बूज है गायनेकोमेस्टिया होगा ही होगा. तो क्या जो ये स्टेरॉइड यूज़ से भी गायनेकोमेस्टिया का इंसिडेंस बढ़ रहा है?
हाँ, स्टेरॉइड यूज़ से भी बढ़ रहा है क्योंकि शॉर्टकट लेते हैं, बिकॉज वैसे बॉडी बनाना इज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड दीज इंजेक्शन से थोड़ा प्रोटीन का बढ़ावा करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है बॉडी बनाना. तो इसलिए लॉट्स ऑफ पीपल गेट इनकरेज टू डू दिस. एंड अनदर थिंग इज दैट वॉट आई हैव सीन कि जो भी ये स्टेरॉयड लगा के आते हैं ना, उनका गायनेकोमेस्टिया सॉफ्ट नहीं होता, उनका बहुत हार्ड गायनेकोमेस्टिया होता है, लॉट ऑफ ग्लैंड इन इट.
ओके, तो ये जो स्टेरॉयड अब्यूज से गायनेकोमेस्टिया होता है क्यों होता है? मतलब क्यों मतलब स्टेरॉयड से बॉडी बननी चाहिए, तो ये स्टेरॉयड से गायनेकोमेस्टिया कैसे बनता है?
बेसिकली वही जो मेल हार्मोन है वो जब बॉडी मेटाबोलाइज करती है थोड़ा एरोमेटाइज हो जाता है, थोड़ा सा फीमेल का आ जाता है. एंड इफ़ योर बॉडी इज मोर सेंसिटिव टू दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ फीमेल हार्मोन, यू गेट अ फुल ब्लोन ब्रेस्ट.
तो टेस्टोस्टेरोन लेने की वजह से जो इस्ट्रोजन बनता है उससे गायनेकोमेस्टिया भी होता है, टेस्ट भी छोटे होते हैं, तो मतलब जो जनानापन है
वो उससे आ जाता है.
तो जो ये स्टेरॉयड वाला गायनेकोमेस्टिया है और नॉन स्टेरॉयड गायनेकोमेस्टिया, एक तो होता है गायनेकोमेस्टिया जो स्टेरॉयड लगाने वालों को होता है, एक होता है जनरल जो मोटापे से
ऑडियोपैथिक हो गया. हाँ,
तो दोनों में क्या फर्क है?
सो दैट्स व्हाट आई हैव फाउंड इज कि जो स्टेरॉयड लगाने वाला होता है ना गायनेकोमेस्टिया, वो काफ़ी हार्ड होता है एंड निप्पल एकदम पफी हो जाते हैं, वाइल दूसरों में जनरली इट्स सॉफ्टर एंड लार्जर एंड विद मोर फ्लैटर निप्पल्स.
ओके, तो आपके जब ओपीडी में कोई पेशेंट आता है गायनेकोमेस्टिया के लिए, सर्जरी कराने के लिए या आपके एडवाइस लेने के लिए, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप उसमें एग्जामिन करते हैं? या अगर मैं घर पे हूँ और मुझे शक है कि मुझे गायनेकोमेस्टिया है, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें मैं अपने अंदर देखूँ या एग्जामिन करूँ जिससे मैं अपनी गायनेकोमेस्टिया को ग्रेड कर सकूँ या समझ सकूँ मुझे कब डॉक्टर के पास जाना है?
ओके, सो बेसिकली आपको एक तो वही चेक करना है, एक आपकी एज के हिसाब से आपके जो बाकी के फीचर्स हैं मेल होने के वो सारे ठीक हों, पेनिस का साइज, टेस्टिस का साइज, ये सब ठीक हों, आपके बाल मेल के अनुसार, मेल पैटर्न के अनुसार आ रहे हों, ये आपने देखा। एंड देन टू ग्रेड इट, हमने जो जैसे जनरल क्लासिफिकेशन होती है वो ज़्यादा ट्रीटमेंट डायरेक्टेड है, ना कि आपके लिए, क्योंकि हमने स्किन को निकालना है या नहीं निकालना वो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रेडिंग।
अच्छा, ओके। पर गायनेकोमास्टर मैंने सुना है दो पार्ट होते हैं, कि एक तो फैट होता है,
फैट और एक ग्लैंड होता है,
तो उसके बेसिस पे भी कोई डिसीजन मेकिंग होती है कि भाई ग्लैंड बड़ा है तो उसका ये होगा, फैट बड़ा है तो ये होगा, या दोनों चीज़ हो सकती है?
सी, हर एक केस में हम फैट भी निकालते हैं और ग्लैंड भी निकालते हैं, सो बट वी डोंट डू एनीथिंग टू द स्किन। अब स्किन का क्या करना है, दैट विल डिपेंड अपॉन क्या ग्रेड है, आपका वेट कितना है, आपकी स्किन इलास्टिसिटी कितनी है, आपने यो डाइटिंग तो नहीं कर रखी कि कभी वेट अप हो गया कभी डाउन हो गया, जिस कारण स्किन श्रिंक नहीं करेगी, सो डिसीजन मेकिंग विल डिपेंड अपॉन दैट।
अगर हमने ग्लैंड निकाल दिया और फैट निकाल दिया और स्किन को मैनेज नहीं किया तो लटक जाएगा, मतलब वो और गंदा?
नहीं नहीं नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम्स हम पहले ही चेक करके देखते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि हाँ आपको 4 महीने लगेंगे, आपको 8 महीने लगेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा, बट अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ स्किन श्रिंकेज अकर्स, दैट आई कैन से इजिली इन मे बी 80-90% ऑफ द पीपल, हमें स्किन को हम बिल्कुल स्कारलेस सर्जरी आपको दे देते हैं।
अच्छा, मतलब बिल्कुल लगता है कि कभी था ही नहीं,
कभी था ही नहीं।
अच्छा, एक जो आज के दिन मतलब ब्रेस्ट कैंसर जैसे एक है जो काफ़ी कॉमन है वुमेन में और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चलता है, पर रिसेंटली कुछ किस्से ऐसे भी आए हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है, तो क्या गायनेकोमास्टिया से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है या गायनेकोमास्टिया से ब्रेस्ट कैंसर छुप जाता है, ऐसा कुछ?
जैसे फीमेल में कैंसर होता है वैसे ही मेल में भी कैंसर होता है, बट मेल में कम होता है, एक तो हार्मोन सा डिफरेंट एंड दूसरा मेल में ग्लैंड भी कम होता है। बट देर इज़ नो गारंटी कि मेल में होगा, गायनेकोमास्टिया नहीं है तो भी होगा, गायनेकोमास्टिया है तो भी होगा, पर अगर बिकॉज द ग्लैंड इज मोर तो ज़्यादा चांस है।
गायनेकोमास्टिया में एक तो बताया आपने कारक है बहुत कॉमन स्टेरॉइड अब्यूज, जो हम ये स्टेरॉइड्स आजकल देख रहे हैं तो लोगों में गायनेकोमास्टिया बढ़ गया है, क्या कोई डायटरी चीज़ें भी है जिसको खाने से गायनेकोमास्टिया होता है, या कोई डाइट में कोई चीज़ है जिसको लेने से गायनेकोमास्टिया का रिस्क बढ़ता है?
सी, ऐसे जो नॉर्मल डाइट्स थी हमारी उसमें तो नहीं बढ़ता था, बट अब क्या होने लग गया कि जैसे टू इंक्रीज मिल्क यील्ड, तो काउज आर फेड विद थिंग्स विच आर लेडेड विद हार्मोन्स, वो काउ के में सिक्रीट होके आ गई, वो मिल्क हमारे अंदर चला गया वो हार्मोन्स, सो उससे फ़र्क पड़ रहा है कि बिकॉज द थिंग्स आर नॉट दैट प्योर नाउ।
ओके, तो डेयरी कंटामिनेशन जो आजकल एक बहुत कॉन्सेप्ट है, इवन हम लोग एंड्रोलॉजी में देखते हैं कि इनफर्टिलिटी बढ़ रही है क्योंकि ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन ये काउ से मिल्क से आ रहा है, तो आपको लगता है कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स जो आ रहे हैं इससे भी गायनेकोमास्टिया बढ़ रहा है?
क्वाइट लाइकली
बिकॉज़ इतना दूध तो है नहीं,
कोई रिसर्च नहीं कर सकते, एक दोनों तरीके हैं ना, एक तो इन ये सारी चीज़ें भी हो गई और दूसरी अवेयरनेस भी हो गई, तो लोग जो पहले छुप के बैठे रहते थे पता ही नहीं था, अब उनको पता है कि ये नॉर्मल है, ऐसे नहीं होना चाहिए।
सो गायनेकोमास्टिया से आपके पास यंग लड़के बहुत आते हैं, और आज मैंने आजकल देखते हैं कि गायनेकोमास्टिया या मैन बूब से साइकोलॉजिकल टेंशन बहुत हो गई, पहले तो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल था तो लोग सब किसी को हुआ गायनेकोमास्टिया कोई बात नहीं, पर आजकल लड़कों में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बहुत है, इवन गर्ल्स भी कमेंट करती है, तो आपको लगता है कि गायनेकोमास्टिया से डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रही है?
काफ़ी होती हैं, आई फाइंड इवन पीपल हु आर जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, वो भी घर से नहीं निकलना चाहते, स्कूल नहीं जाना चाहते, कॉलेज नहीं जाना चाहते, दे अवॉइड कि हम नहीं कर सकते हैं, वी कांट फेस द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछने वाला था आपसे, एज अ पेरेंट जब लड़का यंग है, एडोलेसेंट है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो किसी से बात तो कर नहीं पाता, तो एज अ पेरेंट्स हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो ग्रोइंग बॉयज़ है अगर इस प्रॉब्लम से आपसे शेयर करते हैं, तो एज अ कई बार फादर होता है कि नहीं बेटा कुछ नहीं है ये तो नॉर्मल है, और लड़के के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, तो एज अ पेरेंट क्या करना चाहिए, क्या ऐसा ट्रीटमेंट कराना चाहिए बच्चे का, या ये विद एज ठीक हो जाता है, क्या करना चाहिए इसके अंदर?
सी, पहले मैं बताता हूँ, एज के साथ अगर बहुत छोटा सा है गायनेकोमास्टिया और आपकी हाइट और बढ़नी है तो कई बार वो छुप सकता है एज इट स्ट्रेचेज आउट, और दूसरा रहा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई थिंक एज अ पेरेंट यू शुड टॉक टू द चाइल्ड, आई एम अ फादर सो आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट कि मेरे बच्चे को सर्जरी करानी पड़े, वो भी जो मेरे नज़र में अननेसेसरी है, बट इफ़ इट्स मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन हिम वाई नॉट, इट्स अ स्मॉल सर्जरी, तीन चार घंटे में करके आप घर भी चले जाते हैं। सो
सर आपने देखा होगा जब बच्चों का हो जाता है तो उनकी साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी काफी होती है।
पूरा लेवल ही चेंज हो जाता है, द कंफर्ट लेवल चेंजेस, द कॉन्फिडेंस चेंजेस, द बॉडी कॉन्फिडेंस चेंजेस।
सो आप देखते होंगे मतलब अगर किसी छोटी सी पैथोलॉजी से आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको ठीक कराने से और आप माइंड फ्रेश हो सकता है, व्हाई नॉट। पर इसी पॉइंट पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेरेंट्स का होता है जो आपसे पूछते भी होंगे कि डॉक्टर साहब सर्जरी नहीं कोई दवाइयां है क्या इसकी, तो आर देयर एनी मेडिकेशंस दैट वर्क फॉर गायनेकोमास्टिया? मतलब ट्रूथफुली, मतलब इसमें है कि आपके आपके एक्सपीरियंस प्लस लिटरेचर में दवाइयां काम करती है नहीं करती, और करती है तो कौन सी करती है और नहीं करती।
एज फार एज मेडिकल साइंस गोज, लाइक व्हाट वी हैव ऑलवेज बीन टॉट और जो लिटरेचर में है, ये गायनेकोमास्टिया इज पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज अ ग्लैंड, सो वी कैन नॉट डिसॉल्व एनीथिंग। बट येस देर आर ड्रग्स विच हैव बीन ट्राइड, जैसे एंटी हॉर्मोन ड्रग्स हैं, टेमोक्सीफेन है, क्लोमिफीन है, जो हमारे पास कई बार काफ़ी बार पेशेंट्स लेकर आते हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़े। तो पेशेंट्स ने छः छः महीने ली, उसके बाद जब छोड़ा तो इट बाउंसेस बैक।
ओके, तो जिम में आजकल जैसे ट्रेनर जब बोलते हैं साइकिल खत्म हो गई, अब आप ये क्लोमिफीन ले लो, टेमोक्सीफेन ले लो, तो क्या उससे गायनेकोमास्टिया प्रिवेंट होता है, या मतलब प्रिवेंशन के लिए भी कुछ है क्या? मतलब जो बंदा जिम कर रहा है, स्टेरॉइड ले रहा है, क्या क्लोमिफीन लेने से उसका गायनेकोमास्टिया नहीं होगा, ऐसा कुछ होता
नहीं? दिस आई रियली डोंट नो, बट व्हाट आई हैव सीन इज कि लोगों ने 6-6 महीने क्लोमिफीन टेमोक्सीफेन लिया हुआ है एंड एज सून एज दे स्टॉप 2-3 मंथ्स बैक दे आर बैक टू स्क्वायर वन, हल्का सा कम हो जाता है एंड देन इट कम्स बैक।
ओके, बट खत्म नहीं होता।
हाँ, बिकॉज इट्स लाइक इट्स नॉट अ स्टोन कि आप कुछ उसमें वो ड्रग्स देके, लाइक स्पेसिफिक कॉलीलिथियसिस वगैरह में यू ट्राई आउट कि वो रिजॉल्व हो जाए।
एक बार ग्लैंड बढ़ गया तो बढ़ गया।
हाँ, एंड दिस इज नॉर्मल बॉडी पार्ट, आप बॉडी को कैसे डिजॉल्व कर सकते हो किसी ड्रग से?
तो एक मैंने पीछे देखा था एड आया था मसाज ऑयल का, आजकल तेल लगाने से गायनेकोमास्टिया खत्म हो जाता है, ऐसा कोई तेल वगैरह है गायनेकोमास्टिया के लिए?
जस्ट अ मिथ। आप वैसे भी सोचें कि स्किन के ऊपर से तेल लगाने से अंदर बॉडी में कैसे होगा, इट डज मसल स्पैजम्स के लिए, यस दैट मसाज हेल्प्स बाय काउंटर इरिटेशन, बट आई डोंट थिंक मसाज कैन हेल्प विद दिस।
तो अभी जैसे समझ में आया पूरी थॉट में कि गायनेकोमास्टिया रियल प्रॉब्लम है, इससे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है और गायनेकोमास्टिया से बहुत बच्चे और बहुत यंग एडल्ट्स परेशान भी है। तो अगर आज मेरे को गायनेकोमास्टिया है और मैं उसकी सर्जरी कराना चाहता हूँ, तो मैं अभी आजकल ज़माना इंटरनेट का है, ठीक है, कई लोग क्या है सिर्फ इंटरनेट पे एड्स देख के कहीं भी चले जाते हैं सर्जरी कराने के लिए। तो एज अ पोटेंशियल पेशेंट अगर मुझे गायनेकोमास्टिया सर्जरी करानी है तो मैं एक अच्छा सेंटर, अच्छा सर्जन कैसे चूज करूं?
सो बेसिकली यू हैव टू गो बाय द एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर एक प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए एंड
ही शुड आइडेंटिफाई अ प्लास्टिक सर्जन, मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल
उनके पास MCH होनी चाहिए, बोर्ड सर्टिफाइड होना चाहिए। So these are the two degrees that are recognized in India. So one of those degrees he should have essentially.
तो अगर मैं patient हूँ और मैं आज गायनेकोमास्टिया सर्जरी के लिए इंटरव्यू डालूँ तो मेरे पास कम से कम 10 ऐड आ जाएगी और कोई तरीका नहीं पता करने का कि इसमें सर्जन करेगा या प्लास्टिक सर्जन करेगा, कहाँ होगा, तो क्या रेड फ्लैग्स है कि मेरे को यहाँ पर सर्जरी नहीं करानी है, ठीक है, या फिर क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं या क्या चीज़ें हैं एज अ पेशेंट जो मुझे देखनी चाहिए कि मेरे सर्जन में ये क्वालिफिकेशंस है, मेरे सेंटर में ये रिक्वायरमेंट्स है, ताकि मैं सेफली अपनी सर्जरी करा सकूं?
सो बेसिकली नंबर वन तो यू विल ऑब्वियसली चेक हिज डिग्रीज। नंबर टू आई थिंक यू शुड ऑलवेज गो एंड टॉक टू द पर्सन, यू शुड आस्क हिम, यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस रेडी, यू आस्क हिम, आप अपना कंफर्ट लेवल देखो उनके साथ कैसा बन रहा है एंड देन यू गो अहेड। सी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस will have they'll rather outsource the thing or you should have someone who's been doing it regularly. Okay. And he has developed his own technique, jaise hum logo ne apna kar liya, hum 2.5-3 ghante mein karke hi bhej dete hain.
Okay.
So and walk in walk out scarless, so most of the people will tell you ki hum ye karenge aise karenge.
So before we talk about the surgery, let us talk about the complications. मतलब ऐसी क्या चीज़ें, मतलब जैसे मैंने पीछे भी मरीज़ कई बार हमारे पास भी आते हैं, उन्हें बोलते हैं गायनेकोमास्टिया है आपको उसकी सर्जरी करानी चाहिए, तो पेशेंट हमसे डॉक्टर से पूछता है कि ये छोटी सी सर्जरी है कहीं से भी करा लेंगे, तो ये छोटी सी सर्जरी कहीं से भी करा लेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है जो आपको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम कर सकती है, ऐसी क्या चीज़ है जो गलत हो सकता है जिसलिए आपको अच्छी कराना चाहिए?
सो जो कॉम्प्लिकेशन है एनी सर्जरी, यू कैन गेट ब्लीडिंग, यू कैन गेट सम इन्फेक्शन या स्किन एसिमेट्री हो जाए, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा हो गया, या निप्पल में प्रॉब्लम हो गई, निप्पल नेक्रोस हो गया, उसका रंग बदल गया, पानी सिरोमा हम कहते हैं वो भर गया. सो द कैनुला दैट ही चूजेस एंड द एग्रेसिवनेस विल ऑल्सो डिसाइड द आउटकम.
जैसे कई बार हम देखते हैं कई बॉडी बिल्डर डालते हैं फोटो इंटरनेट पर, दिखता है कि एकदम निप्पल पकड़ सा है, अंदर घुसा पड़ा है, जैसे वो देख के लगता है कि सर्जरी हुई है. तो दैट अगेन इज समथिंग दैट अ गुड
कैन बी केयरफुल, हाँ, दैट यू कैन प्रिवेंट. तो हम वो पकड़ नहीं हो, इसलिए निप्पल के नीचे कितना अमाउंट छोड़ना है कि वो बिल्कुल ही श्रिंक ना कर जाए.
आप देखेंगे बहुत बॉडी बिल्डर से लगेगा कि जैसे निप्पल अंदर घुसा हुआ है, जैसे तो वो जो कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होनी चाहिए. So that is something जो अच्छा experience surgeon prevent कर सकता है.
Yes, dish deformity नहीं हो.
Okay. So gynecomastia, अब surgery की बात करें तो gynecomastia surgery में क्या-क्या steps होता है? What are the surgical steps?
Okay. So first step होता है जैसे हम उसमें अंदर एक fluid डालते हैं. इस fluid का काम है कि थोड़ा सा fat वगैरह को ढीला कर देता है, उस जगह को बिल्कुल सुन कर देता है, और उसमें हम एक drug mix करते हैं जिससे वो ब्लड सर्कुलेशन बंद कर देता है. सो जब ये हो जाता है ना, तो जो ऑपरेशन जब करते हैं तो जो सक्शन करते हैं, फैट निकालते हैं, वो बिल्कुल ब्लडलेस होती है और पेन फ्री होती है. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड. देन द सेकंड स्टेप इज़ लाइपोसक्शन. अब लाइपोसक्शन में हम ना केवल ब्रेस्ट एरिया, आसपास एरिया भी कॉन्टूर करते हैं, सो दैट वो अचानक गड्ढा ना लग जाए, वो सारा एक लेवल में फ्लैट होता जाए.
Okay.
And then the final step is removing the gland.
Okay.
And all these have to be done so that the end result is a scarless, so that chest पे पता भी नहीं चले कि क्या हुआ.
तो कितना बड़ा चीरा आता है, मतलब कितने, जैसे हमारे इंडिया में कॉमन है कितने टाके का चीरा आता है.
So हम एक तो हम बगल में करते हैं जहाँ पे आपका छुपा रहता है, पता ही नहीं चलता, जहाँ पे चेस्ट और आर्म मिलते हैं वहाँ एक क्रीज होती है, तो उसी में वो डाल देते हैं, वो आपको भी नहीं मिलेगा कहाँ है.
Okay.
और दूसरा कट जनरली अबाउट 1-1.5 centimeters डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना बड़ा ग्लैंड है, वो लगाते हैं, और वो भी बिल्कुल जंक्शन पे लगाते हैं निप्पल और स्किन. तो वो भी नहीं दिखता है कुछ टाइम डालकर, वंस इट हील्स, हाँ, सो इट बिकम्स स्कारलेस.
तो गायनेकोवैस्कुलर सर्जन में पेन कितना होता है, व्हाट पेन शुड अ पेशेंट एक्सपेक्ट, मतलब
पोस्ट ऑप.
So, पेनफुल सर्जरी क्या है?
नहीं, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल सर्जरी. आप नॉर्मल पेन किलर से बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं. So, मतलब जो मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स यही बोलते हैं कि हमें ऐसे लग रहा है सोरनेस जैसे आफ्टर लॉट ऑफ एक्सरसाइज, जो आपको मसल में सोरनेस क्रैम्प्स आते हैं, उस तरह की फीलिंग होती है. दिस पीक्स ऑन द सेकेंड डे, थर्ड डे ऑनवर्ड्स इट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल. सो मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट टेक मे बी 1 or 2 days ऑफ वर्क.
तो एनेस्थीसिया, मतलब क्या मरीज को पूरा बेहोश करते हैं?
वो पेशेंट की चॉइस रहती है.
पर जनरली क्या रिक्वायरमेंट है बेहोश करने?
नहीं, जरूरत नहीं है,
बिना
बेहोश के भी कर सकते हैं.
तो पेशेंट को कितने दिन छुट्टी, कितने दिन घर पे रहना पड़ता है सर्जरी के बाद, सर्जरी के पहले?
तो जैसे मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि जैसे पेशेंट्स जो वर्क कर रहे हैं उनका वीकेंड ऑफ होता है, सो दे विल टाइम इट कि चलो सैटरडे मॉर्निंग हमारा वीकेंड ऑफ है, सैटरडे मॉर्निंग दे डू इट एंड मंडे दे आर बैक टू वर्क.
ओके. अच्छा, मोस्टली करने को मैच्चे वाले पेशेंट जिम गोअर्स है, ऑब्वियसली जिम जाते हैं, तो व्हेन कैन दे स्टार्ट जिम अगेन?
सो जिम में द डिफरेंट थिंग्स दैट यू डू, सो एक्सरसाइजिंग योर लेग्स प्रॉब्ली यू कैन स्टार्ट इन वीक 10 days, डूइंग बाइसेप्स यू कैन अगेन स्टार्ट इन 2 weeks, बट पेक्स का जो है, चेस्ट की एक्सरसाइज है जो पेक्स को बढ़ाने के लिए करते हैं, दैट हैव टू बी ऑफ फॉर 4 weeks एटलीस्ट, मे बी समटाइम्स 6 weeks, चेस्ट एक्सरसाइज नहीं करनी.
सो सो आपने बताया कि डे केयर सर्जरी है, सेम डे जा सकते हैं, 2 दिन बाद काम पे जा सकते हैं, एंड बाकी रिकवरी के लिए नहाना और ड्रेसिंग्स का क्या सिचुएशन रहता है?
सो आफ्टर सर्जरी हम उस जगह पे एक टेप लगा के रखते हैं, सो यू कैन टेक जो जहाँ से यहाँ किया है, वो तो एक छोटा सा टेप होता है बैंडेड साइज का ही, तो बिलो दैट टेप यू टेक बाथ आराम से, यू कैन वॉश योर हेड, योर हेयर, योर आर्म्स, एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल एरिया ऑन द चेस्ट जिसको आप गीले टॉवल से साफ करेंगे, बाकी एरिया तो आप सेम इवनिंग से आप कर सकते हैं, नेक्स्ट डे से कर सकते हैं. एंड दिस स्ट्रैपिंग इज जनरली टेकन ऑफ एट अ वीक, जब हम स्टिच भी निकाल देते हैं, एंड एक आपको स्पेशल बनियान पहनने को देते हैं विच यू वियर फॉर 4 weeks, और वो बनियान आपके कपड़ों के नीचे ही होती है.
तो कंप्रेशन गारमेंट्स का भी कोई रोल है इसमें?
हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा था जो स्पेशल बनियान है, दैट्स कॉल्ड अ कंप्रेशन गारमेंट, ये इसका रोल यही है कि एक तो स्वेलिंग को लिमिट करके रखती है और इट हेल्प्स द स्किन श्रिंक एंड स्टिक टू दैट एरिया. हमने स्किन पे कुछ नहीं किया है, हमने अंदर की चीज़ को खाली कर दिया है, तो अब उस जगह को खाली होकर चिपकना है. सो दिस विल हेल्प यू विद दैट.
रीमॉडलिंग होना, बिल्कुल फ्लैटनेस आने में.
हाँ, पानी नहीं इकट्ठा होगा उसमें, स्वेलिंग नहीं आएगी. जो खाली जगह है उसको वो चिपका के रखती है.
गायनेकोमेस्टिया में ऑलमोस्ट हर जगह ऑलमोस्ट सिमिलर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लेटेस्ट एडवांसमेंट्स है, कुछ लेटेस्ट चीज़ें हैं, या सिर्फ वो एक मार्केटिंग गिमिक है, एक्चुअली कुछ नहीं है?
सी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैं आजकल, एवरीवन यूजेस पावर इंस्ट्रूमेंट्स, सो वी यूज दोज. बट इफ़ कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ज़्यादा कुछ चाहिए है, जैसे इफ़ इट्स अ वेरी लार्ज गायनेकोमेस्टिया वेयर समथिंग कॉल्ड वेजर, विच इज़ एन अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी विच वी यूज, कि थोड़ा सा ज़्यादा फैट निकल सकता है, थोड़ा स्किन श्रिंकेज ज़्यादा अच्छा है. एंड अब हमारे पास एक और एडवांसमेंट आ गई है, दैट इज़ कॉल्ड बॉडी टाइट. उसमें वेन वी डू नॉट एक्सपेक्ट द स्किन टू श्रिंक वेरी वेल, सो वी यूज़ दैट. दैट्स अ रेडियो फ्रिक्वेंसी काइंड ऑफ अ थिंग जो अंदर से भी स्किन को टाइट करती जाती है. सो थोड़ा रिजल्ट और इम्प्रूव करने के लिए,
छाती लटकी हुई है,
हाँ, और जहाँ पे हम स्किन ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे श्रिंक करने के लिए.
ओके, तो उसमें टेक्नोलॉजीज वेजर और बॉडी टाइट,
बॉडी टाइट, बॉडी टाइट कैन बी एडेड टू दैट.
दिस आर एडवांसमेंट्स इन,
दिस इज एन एडवांसमेंट.
अच्छा, अब कुछ बात करेंगे कॉस्ट के बारे में, क्योंकि आजकल कॉस्ट पे ही बहुत चर्चा रहती है, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स की डॉक्टर्स आर मेकिंग टू मच मनी. ठीक है, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस सर्जरीज में इंश्योरेंस अवेलेबल है?
इंश्योरेंस कवर तभी मिल पाता है अगर उसमें हमें कोई बहुत प्रॉब्लम हो रही है. सो उसमें अगर वो पक रहा है बार बार, या उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, या उसके कारण बैक एक है. सो अदरवाइज एट प्रेजेंट इन इंडिया इट्स नॉट कवर्ड लीगली.
ओके, तो प्लास्टिक सर्जरीज आर नॉर्मली एस्थेटिक सर्जरीज, कॉस्मेटिक सर्जरीज नॉट कवर्ड. बट गायनेकोमेस्टिया तो मतलब बीमारी के रूप में ही आती है, तो जैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी है, और तो तब भी कवर्ड नहीं है, उसके अंदर भी कवर नहीं होता है.
गायनेकोमेस्टिया पर से लिखेंगे नहीं कवर्ड है.
ओके, पर अप्रोक्सीमेटली क्या कॉस्ट रेंज होता है गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कराने का? बहुत वेरिएबल है या अप्रोक्सीमेट कोई रेंज है इसकी?
जनरली तो मोस्ट ऑफ टाइम इट्स यूनिफॉर्म चार्जिंग ओनली, अनलेस कि कुछ स्पेशल हो रहा है, कि हमें स्किन एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, या बहुत बड़ा है, मैसिव गायनेकोमेस्टिया है, या हमें स्टेज करना पड़ रहा है, दो बारी में करेंगे, कि एक बारी वी अलाउ एज मच श्रिंकेज एज पॉसिबल. द आइडिया इज टू मेक इट एज स्कारलेस एज पॉसिबल. सो वी रादर लाइक टू वेट कि हम कर लें,
और कॉस्टिंग डिफरेंस
कहाँ पे हो रही है, व्हाट वेजर यूज कर रहे हैं.
ओके, पर लोएस्ट लोअर एंड पे क्या अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग? नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं, जिम गोअर्स होते हैं,
35-40,000
फॉर बोथ द ब्रेस्ट.
हाँ,
अच्छा, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात की थी आपने स्टार्टिंग में, तो वो तो हम कवर कर दिया. पर अभी हमने सर्जरी करा ली गायनेकोमेस्टिया की और हम ठीक भी हो गए, क्या गायनेकोमेस्टिया फिर से हो सकता है सर्जरी के बाद भी?
तो गायनेकोमेस्टिया, देखो, जब हमें पता है कि इन कारणों से हो सकता है दोबारा, जो इडियोपैथिक था, जो आपको 14 इयर्स पे व्हेन बॉय बिकेम अ मैन वो बना, वो दोबारा नहीं होता है. सो दोबारा तब होगा जब आप कुछ ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जिसका साइड इफेक्ट ये हो गया, लॉन्ग टर्म खा ली, जैसे टूबोक्लोसिस की दवाइयों से भी हो सकता है. सो और आपने या स्टेरॉयड अब्यूज कर लिए,
जैसे आप जिम गोर थे, वो तो स्टेरॉयड छोड़ेंगे नहीं,
तो दे कैन एक्सपेक्ट, हाँ, दे कैन एक्सपेक्ट अ रिकरेंस.
बिकॉज
नहीं, हमने थोड़ा सा ग्लैंड छोड़ा है, हमें उसको गड्ढा नहीं बनाना, हमें उसको एक नॉर्मल लुक देनी है. हमें एक चाहिए कि वो निप्पल हल्का सा अप हो, नॉट टू मच अप, तो हमें एक अमाउंट ऑफ ग्लैंड छोड़ना पड़ता है.
ओके, तो अगर वो स्टेरॉयड तब भी लेते रहेंगे तो हो सकता है फिर से बढ़ जाए.
हाँ, दैट कैन हाइपरट्रॉफी.
टॉपिक को बहुत एक्सटेंसिवली कवर करने के लिए थैंक यू डॉक्टर सूक्ति. बट एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें हम 10 कॉमन मिथ्स है गायनेकोमेस्टिया के बारे में, आपको उनके बारे में शॉर्ट आंसर यस या नो के फॉर्म में. तो पहला क्वेश्चन है, गायनेकोमेस्टिया वजन बढ़ने से होता है, यस या नो?
वजन बढ़ने वालों में हुआ ही होता है, मतलब मैंने तो एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि सबका होता ही है.
ओके, कोई गायनेकोमेस्टिया सिर्फ बुढ़े लोगों में होता है?
नहीं, इट स्टार्ट्स राइट एट 14 इयर्स एंड पूरे एज स्पेक्ट्रम में होता है।
अच्छा, हम अच्छी डाइट और एक्सरसाइज करके गायनेकोमास्टिया को खत्म कर सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम डाइट कंट्रोल कर जब वेट लॉस करेंगे तो होगा, क्योंकि इसमें ग्लैंड के अंदर थोड़ा फैट भी है। बट मैंने तो देखा है कई बार काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है कि आपने 20 किलो कम कर लिया, पेट एकदम अंदर चला गया और छाती एकदम और ज्यादा दिखने लग गई, क्योंकि वो उतनी प्रोपोर्शनेटली कम नहीं होती है।
डिफिकल्ट फैट होता है ब्रेस्ट फैट जो,
इट्स बिकॉज़ इट्स ग्लैंड और फैट इज विद इन द ग्लैंड।
गायनेकोमास्टिया सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू है, ये मेडिकल इशू है ही नहीं।
I feel it's true. Cosmetic issue, yeah, but cosmetic issue with lot of psychological stress.
Gynecomastia सोयाबीन खाने से होता है?
I really don't know.
Gynecomastia सिर्फ सर्जरी से ठीक हो सकता है, इसकी दवाइयाँ ज़्यादा काम नहीं करती।
I will go with it. I feel कि यही है।
Gynecomastia अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं करना।
Maybe in a growing child with a very small gynecomastia, जो बहुत height raise अभी आने वाली है, जिसमें वो chest flat हो जाएगी, नहीं होता ठीक बिना उसके।
Gynecomastia के आदमी में breast cancer हो जाता है?
Not really true. Incidence will stay the same. जो cancer का incidence men में है, उतना ही रहेगा।
Gynecomastia सिर्फ steroid लेने वालों में है? अगर किसी ने steroid लिया होगा, कई बार parents आते हैं कि लड़का steroid use कर रहा है जिम में, कि gynecomastia steroid लेने वालों में ही होता है बस?
नहीं 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 सर, बहुत सारे लोगों में वैसे ही हो जाता है। सो इडियोपैथिक तो हम जानते ही हैं, जहाँ थोड़ा बहुत हार्मोन एक्सेस हुआ एट प्यूबर्टी, तो दैट हार्मोन एक्सेस हैज रिजल्टेड इन गायनेकोमास्टिया बिकॉज ऑफ सुपर सेंसिटिविटी ऑफ द ग्लैंड टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ फीमेल हार्मोन्स दैट डेवलप्ड एट दैट टाइम।
अब लास्ट में, बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर को जो गायनेकोमास्टिया के बारे में सोच रहा है?
So I think number one is don't try to hide your fears. आपको बुरा लग रहा है, please come out, talk to a doctor. It's not a big surgery. Talk to your parents. Everyone is there to help you. आप अगर बात करेंगे तो ही कहीं पहुँचेंगे।
तो इस पूरे podcast का single message ये है कि gynecomastia कोई social media myth नहीं है। आज के ज़माने में जहाँ पर beauty पे बहुत जोर है, जहाँ looking good पे बहुत जोर है, अगर आपको gynecomastia है और आपको उससे अनकंफर्टेबल हो रहा है, इवन दो वो कोई मेडिकल इशू नहीं करेगा आपके लिए क्रिएट, पर आप अनकंफर्टेबल है, आप पसंद के कपड़े नहीं पहन पा रहे, आपकी रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, तो गायनेकोमास्टिया एक प्रॉपर क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से एक अच्छे सेंटर पर 2 घंटे में इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अच्छे सेंटर पर कराएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट तो मिलेगा और ये प्रॉब्लम आपकी फ्यूचर के लिए भी ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर सोपती, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।